सज्जन देवियों, इसी हफ्ते हमने अभी थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट किया। जीवन में ये एक नेचुरल वे है, व्यक्ति जितना अंदर से फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, जितने वो थैंक्स के साथ भरा हुआ होता है, उतना उसको फायदा होता है जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड रखता है। जिसके अंदर ये ग्रेटफुलनेस होता है, दूसरों के किए गए एहसान को, अच्छाई को जो एक्सेप्ट करता है, वो किसी दूसरे के फायदे के लिए नहीं करता, वो खुद की भलाई के लिए करता है। ये जो अप्रिसिएशन है, उससे दूसरों को इतना भला नहीं होता जितना हमें खुद होता है। संसार में जो व्यक्ति अंदर से ग्रेटफुल होता है, प्रिटेंड करने की नहीं, जो अंदर से ग्रेटफुल होता है, उसके जीवन ज्यादा खुशहाल होता है, वो ज्यादा स्ट्रेसलेस होता है और वो ज्यादा खुश मिलता हुआ खुश व्यक्ति होगा। ये आपके हमारे शरीर का और मन का नेचर है कि जितना मन प्योर होता है, अंदर से उतनी खुशी आती है। प्योरिटी का अर्थ है कि जब अगर आपकी ग्लास साफ है, आपका मिरर अगर क्लीन है, क्लियर है, तो जो जैसा है वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा। पानी अगर प्योर है तो वो आप उसमें जो चीज जैसा देखें वैसा देख सकते हैं। निर्मल मन का ये स्वभाव होता है कि उसके अंदर वो सारे स्नेह, प्रेम, दया, करुणा, ये सब भाव होते हैं, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। और जितना मन निर्मल होता है उतना वो निखरते हैं। निर्मल मन है, आप कैसे जानेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका माइंड बहुत क्लीन है, प्योर है, जब आप जो चीज जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर पाते हैं। अगर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया और पर मुझे ये फील नहीं हो रहा है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया, तो इसका मतलब मैं उस ट्रूथ को, उस सच को अपने माइंड में रिफ्लेक्टेड नहीं देख पाता हूं। मेरा मन खराब है, बिगड़ा हुआ है, इम्प्योर है। अगर सोसाइटी में मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं दुनिया के करोड़ों लोगों से ज्यादा अच्छा चीज पोजेस करता हूं, मेरे पास जितने भी धन हैं, वो धन इस धरती में रहने वाले 750 करोड़ लोगों में से 350, 400, 500, 600 करोड़ लोगों से ज्यादा है। ये ध्यान दीजिएगा, गरीब से गरीब आदमी के पास भी इतना कुछ है कि करोड़ों लोगों के पास उतना भी नहीं है, वो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे जाते हैं। उसके बावजूद भी मुझे अगर शिकायत है, कंप्लेंट है, और मुझे लगता है कि सारी दुनिया खराब है, मेरे लिए किसने कुछ किया नहीं है, इसका अर्थ नहीं है कि सचमुच मेरे लिए किसने कुछ किया नहीं है। इसका अर्थ है कि मैं वो सच मेरे माइंड में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, और ये मेरा इम्प्योर माइंड है, ये मेरी गंदी मानसिकता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? और कुछ नहीं होता है, मैं हमेशा दुखी रहता हूं, मैं हमेशा शिकायती रहता हूं, कंप्लेंट करने वाला रहता हूं। कंप्लेंट मुझे अपने से, कंप्लेंट मुझे अपने पेरेंट्स से, कंप्लेंट मुझे अपने सिबलिंग्स से, अपने भाई बहनों से, कंप्लेंट मुझे अपने नेबरहुड से, मुझे अपने सरकार से, मुझे अपनी सोसाइटी से, मुझे नेचर से, ऐसा कोई चीज नहीं जिसे मुझे शिकायत नहीं होता है, मुझे खुद को छोड़कर सबसे शिकायत है, इसीलिए मैं कभी खुश नहीं रहता हूं, क्योंकि मैं अप्रिशिएट करना नहीं जानता हूं। अप्रिशिएट इन द सेंस जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना, उसको मानना, उस ट्रूथ को मानना कि मैं जो कुछ भी हूं उसमें बहुत सारे लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है। जिस दिन ये भाव आ जाए तो अपने आप ग्रेटफुल होंगे, अपने आप थैंक्स करने लगेंगे। अब मुंह में बोलते हैं नहीं बोलते हैं ये मैटर नहीं करता, आपके दिल में अगर ये भाव आता है किसी के प्रति वो आपके मुंह में झलकेगा। आप लैंग्वेज में यूज करते नहीं करते ये मैटर नहीं करता, वो आपके एक्सप्रेशन में झलकता है। जब किसी के लिए आप भला करते हैं और आदमी जेन्यून है, कनिंग नेचर का नहीं है, उसके शकल में वो आपको थैंक्स बोलता है नहीं बोलता ये मैटर नहीं करता, उसके एक्सप्रेशन में उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बोल देगा कि वो कितना ग्रेटफुल है आपके प्रति। अब व्यक्ति जब ग्रेटफुल फील करता है, बोलता है नहीं बोलता है वो अलग मैटर है, तो वो उसके अंदर की खुशी को बढ़ाता है। ये हमें हेल्प करता है अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए, दूसरों के लिए कुछ हो ना हो। इवन आप प्राणियों में भी देखिए, एनिमल्स में भी देखिए, आप कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, जिन पशुओं को भी, इवन अगर आप शेर बाघ को भी, जो लोग जो चिड़ियाघर में जू में जो लोग उनका केयर करते हैं, केयर टेकर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ केयर टेकर प्रोफेशनल होते हैं, उनको पैसा लेना होता है, काम करना होता है, पर बहुत सारे केयर टेकर होते हैं जो जेन्युइनली अपने जिस जानवर के लिए उनको रखा गया है उसकी सेवा करते करते जेन्युइनली वो उससे प्यार करते हैं, उसको केयर करते हैं। आप देखेंगे जब एक इंसान और उस खूंखार जानवर के बीच में जेन्युइन लव हो जाता है और वो जानवर समझता है ये इंसान मुझे खिला इसीलिए मेरा है कि इसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, उस खिलाने में भी वो उसको प्यार को एहसास करता है, फिर उनमें वो जानवर उस आदमी को देखते ही उसका जो एटीट्यूड होता है, जिस तरह वो एक्सप्रेस करता है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज वो बोलता है कि कितना वो ग्रेटफुल है। ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसको आप नेचुरल लव दो और वो अपने थैंक्स आपको एक्सप्रेस ना करे। ये एनिमल्स में भी ये नेचर दिखता है, ह्यूमन बीइंग में भी दिखता है, पर क्योंकि हम बहुत ज्यादा दुनियादारी में और फंसते फंसते इतने ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, हर चीज में एक्सक्यूज ढूंढते हैं, तो हमारा जेन्युइननेस धीरे धीरे कम हो जाता है, हम प्रिटेंडिंग नेचर वाला ज्यादा होते हैं। कभी कभी आपको लोग मिलेंगे जो जिंदगी भर हर बात पर थैंक्स सारी वेलकम करते रहते हैं, पर अंदर से बहुत दुखी मिलेंगे, वो इसीलिए कि उनके अंदर से कोई वो ग्रेटिट्यूड का सेंस नहीं है, वो ट्रेंड है, क्योंकि उनको थैंक्स बोलना है, वो बोलते जाते हैं, तोतों की तरह जीभ पर आ चुका है, पर फीलिंग नहीं आती है। और जब तक आप वो फील नहीं करें कि किसी ने आपके लिए कुछ एहसान किया है, तो वो जो आप शो करते हैं वो प्रिटेंडिंग होता है, उसका ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलता है। आप सोशियली वेल बिहेव्ड पर्सन कहला सकते हैं, पर जो उसका फायदा आपको मिलना चाहिए, खुद को मिलना चाहिए थैंक्स बोलने पर, वो आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि अंदर से आप थैंकफुल नहीं होते हैं। तो ये जो पहली शिक्षा है, जो पहली लेसन है कि जब आप थैंकफुल होते हैं आप किसी पर एहसान नहीं करते, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करते, आप खुद को भला करते हैं, खुद का भला करते हैं, आपका अंदर ज्यादा प्योर होता है, आपकी खुशी ज्यादा होती है और आप ज्यादा चीजों के साथ एडजस्ट कर पाते हैं। तो जितने अंदर से हमारे अंदर ये भाव होगा ग्रेटफुलनेस के, उतना हम खुश रहेंगे। नंबर टू, जब भी हमें कंप्लेन का भाव आए कि नहीं मैं तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, दुनिया ने मेरे साथ वो किया, मैं ये कर सकता था, अगर कंप्लेन भाव आए किसी के भी प्रति, अगर आप रात को डायरी लिखते हैं, अगर आप दिन में बैठ के कभी भी हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार बैठ के लिखते हैं और नियम बना के लिखिए कि मेरे साथ मुझे क्या क्या लाभ हुआ, मेरे क्या क्या फायदा हुआ, मुझे कौन सी चीज ऐसी मिली जो मैं थैंकफुल हूं, तो आप सरप्राइज करेंगे कि दुनिया में आपके साथ ऐसी ऐसी करोड़ों चीजें घटती है जिनका आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि जिसके लिए आपको थैंकफुल होना जरूरी है। भगवान से लेकर आपके पड़ोसी तक आपको इतनी सारी चीजें कर देते हैं, अगर आप ये नोट करने चलो कि व्हाई शुड आई बी थैंकफुल, तो आप लिखते लिखते थक जाएंगे। जब शुरुआत करेंगे तो शायद एक भी ना याद आए, पर जब आप लिखते चलेंगे आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी चीजें आपके पास है जिसके लिए आपको थैंक्स बोलना ही पड़ेगा। इसीलिए ये कल्टीवेट करना अच्छा है खुद के लिए कि हम दुनिया में दूसरों के प्रति थैंकफुल फील करें। सबसे पहले तो हम ईश्वर के प्रति धन्यवाद रखें कि अगर ईश्वर की इच्छा हुई तभी हमें ये इंसान का शरीर मिला। बहुत कम दुनिया में इस धरती पर ट्रिलियन ट्रिलियन ऑफ एनिमल्स हैं, प्राणी हैं। अगर आप सेल्स को भी काउंट करें, पेड़ पौधों को काउंट करें तो अनकाउंटेबल, आप तो काउंट भी नहीं कर सकते हैं। इतने सारे लिविंग बींग इस अर्थ पर है, पर सिर्फ 700 करोड़ के करीब करीब इंसान है जी। ये बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा रेयर होता है इंसान का ह्यूमन बींग बनना, पैदा होना, क्योंकि वो एक ऐसा जन्म है जहां आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो, आप अपने आप को किसी भी लेवल तक ले सकते हो, आप स्पेस में भी जा सकते हो, समुद्र में भी डूब सकते हो, आप हवा में उड़ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो जब आप ह्यूमन बींग बनते हो। किसी दूसरे प्राणी में ये शक्ति नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, ये ह्यूमन बींग में होता है, ये बहुत रेयर होता है। अगर इंसान बनने पर भी मैं दुखी हूं तो मैं अपने आप को समझा नहीं हूं। एक रेल लाइट पर एक आदमी भीख मांग रहा था, बच्चा, कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, मेरा वो नहीं वो नहीं, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरी मां बुढ़ी है वगैरह वगैरह, मुझे पैसे दे दो, भगवान के नाम पर पैसा दे दो है? तो लोग दे देते। एक साधु व्यक्ति मिला, उसने बोला बेटे ऐसे मत बोला कर कि भगवान के नाम पर पैसा दे दो, भगवान ने तुम्हें इतना कुछ दिया है तो भगवान को क्यों कोसते हो, भगवान के नाम पर पैसा मांगते हो। उसने बोला क्या दिया, देखो मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, खाना नहीं है, मेरी बुढ़ी मां है, मेरे पास ये नहीं वो नहीं वो नहीं। बोले अच्छा, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा काम करो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, तुम अपने दोनों हाथ काट के मुझे दे दो। उसको लगा, बड़ा सरप्राइज हुआ, परेशान हुआ, शॉक्ड हुआ, ऐसे क्रूर आदमी, क्रूएल आदमी बोलता है 10,000 देगा, हाथ काट के दे दो। बोले ये थोड़ी होता है, अच्छा चलो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, तुम मुझे अपना एक आंख खोप दे दो। ऐसे कैसे होगा, आंख दे दूंगा। उस आदमी ने पैसा बढ़ाते गया, बॉडी के एक एक पार्ट्स मांगता गया। लड़का परेशान हुआ कि ये क्या बोलता जाता है, मेरे शरीर के अंग तो लेता जाएगा, मुझे पैसे की क्या जरूरत है। 5 लाख 10 लाख तक पहुंच गया, बच्चा एक भी शरीर का अंग देने को तैयार नहीं है। साधु मुस्कुराया, बोले तुम्हारे पास करोड़ों की चीजें हैं तो 10 लाख में भी देने को तैयार नहीं है, फिर बोलते हो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हारे हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, आंख है, कान है, कौन सा चीज, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, मूत्र है, अब कुछ तो है।
बहुत सारे लोगों के पास इनमें से बहुत सारी चीजें नहीं है,
तभी तुम बोलते हो भगवान ने कुछ नहीं दिया। जितना है उसको यूज करो, देखोगे कितना मिलेगा। हमें जो हमारे पास जो है हमें वो दिखता नहीं, हमें वो दिखता है जो हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो जाते हैं, और इसीलिए हम बहुत ज्यादा थैंकलेस फीलिंग के साथ जीने के लिए मजबूर होते हैं। इतने वैल्यूएबल ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है, इतनी सारी चीजें देते हैं, हम उसको वेलकम नहीं कर पाते, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, हमारे अंदर दुनिया भर की ग्रॉज बना रहता है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं, वो चलता रहता है। इसलिए वो तो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड अपने अंदर कल्टीवेट करने की जरूरत है। और वो कैसे, मेरे पास क्या है, जब आप उस पर फोकस करते हैं। देखिए एक बिजनेसमैन जो शुरू में बिजनेस शुरू करता है, उसके पास जो कैपिटल होता है, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हुए हैं, कब बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, पैसे वाले आदमी हैं, जिनको दिन को देखकर आज आपको ईर्ष्या होती है, जेलेसी होती है, देखो कितना पैसा है, आप ड्रीम भी नहीं कर सकते इतने पैसे। जब उन्होंने शुरू किया, देखो वो कहां से शुरू किया, आपके हमारे तरह 5,000-10,000, कोई 10,000 रुपए में शुरू करता है तो कोई 10,000 डॉलर में शुरू करता है, कोई 1,000 रुपए में शुरू किया तो कोई 1,000 डॉलर में शुरू किया। उनको 1,000 रुपए या 100 डॉलर या 500 डॉलर, वो उनको कैपिटल लगता है, पूंजी लगती है, उसको वो इन्वेस्ट करते हैं, अपने दिमाग लगा के काम में लाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। शिकायत करने वाले आदमी के पास शुरुआत में उससे 40 गुना ज्यादा पैसे थे, उसके पास 10,000 डॉलर थे, वो आज भी 12,000 डॉलर लेकर के बैठा है 40 साल के बाद, शिकायत करते करते कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब आपके पास कुछ है, जब तक आप उसको काउंट नहीं करोगे, जब तक हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि मेरे पास ये है, तो फिर मैं उसको आगे बढ़ा नहीं सकता। कोई भी पैसे वाला आदमी जिसके पास पैसा है और वो उसको दिखता नहीं है, वो कभी उससे आगे नहीं कमा सकता। पहला स्टेप है कि आपके पास दिखना चाहिए, पता होना चाहिए आपके पास क्या है। अगर आपको ये एहसास नहीं है, क्योंकि आप इट्स फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आपके पास दो हाथ हैं, आपके पास दो पैर हैं, और जिस दिन आप सीरियसली फील करोगे कि आपके पास दो हाथ और दो पैर हैं, दो आंख हैं, मुंह है, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इतना कुछ कर सकते हो। या अमेरिका में भी, यहां भी आप देखते हैं, आप आजकल तो यहां के रियल लाइफ में भी आपको मिल जाएंगे 30 साल के 40 साल के लड़कियां मिल जाती हैं भीख मांगते हुए, हेल्प मी, यहां मिल जाते हैं रियल लाइफ पर, ये अपने हाईवे 6 से लेकर कहीं भी जाओ। बड़ा आश्चर्य लगता है, अमेरिका जैसे देश में भी जवान लड़के लड़कियां ये पट्टियां लेकर घूमते हैं हेल्प, जबकि यहां काम की कोई कमी नहीं है। किसी भी स्टोर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हाईस्कूल के बच्चे जाकर काम करते हैं, किसी के यहां लेबर का काम करते हैं तो भी आप 8-10 घंटे काम करते हैं तो 60-70-80 डॉलर कमा सकते हैं। पर क्योंकि उनको वो दिखता नहीं, वो उसको काउंट नहीं करते कि उनके पास कुछ है। और जो नहीं है वो उनको दिखता है, उनको दिखता है कि मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए मैं हेल्पलेस हूं, मुझे हेल्प करो। पर उनको ये नहीं दिखता है कि उनके पास शरीर है, हेल्दी बॉडी है, वो उसको कहीं यूज करेंगे तो उससे भी पैसा कमा सकते हैं। तो जब आपका फोकस जो है उस पर जाएगा, नेचुरली आप थैंकफुल होंगे, आप ग्रेटिट्यूड से फूल हो जाएंगे, भर जाएंगे। जब आपको दिखेगा आपके पास जो आपको पास है वो नहीं दिखेगा, तो आप कंप्लेंट करते रहेंगे, आप शिकायती बनते जाएंगे। ईश्वर हर वक्त हमें, उसके आशीर्वाद हमेशा हमारे पर होता है। महात्मा बुद्ध हमेशा कहा करते थे कि अमृत बरसता है और अनंत काल से बरस रहा है हर जगह। उनका शिष्य आनंद था, जो क्लोज शिष्य था, उसने बुद्ध को अकेले में पूछा कि आप हर जगह बोलते हो कि अमृत बरस रहा है, आनंद बरस रहा है, लेने वाला चाहिए, मुझे तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, आनंद बरस रहा है, अनंत बरस रहा है, ना ये आनंद दिख रहा है ना उसकी इन्फिनिटी दिख रहा है, और आप कह रहे हो खाली आनंद नहीं, वो भी इन्फिनिट ब्लिस आनंद बरस रहा है, मुझे तो दिखता नहीं है, और आप क्यों बोलते रहते हो। महात्मा बुद्ध ने कहा तुम्हें नहीं दिख रहा है, तुम्हें नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ नहीं कि आनंद नहीं बरस रहा। शहर में 3 दिन से पानी बरस रही है, तुम्हारा घड़ा नहीं भरता है, इसका अर्थ नहीं कि बारिश नहीं हो रही, अपना घड़ा ठीक करो, घड़ा उल्टा मुंह रखा होगा, घड़े में छेद होगा कि पानी नहीं भर रहा होगा, निकल जाता होगा, घड़े का मुंह उल्टा होगा तो भी एक बूंद पानी नहीं जा रहा होगा, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि बारिश नहीं हो रही, बारिश में तो शहर डूब चुका है पर तेरा घड़ा नहीं भर रहा है, और तू कह रहा है क्योंकि मेरा घड़ा नहीं भर रहा है तो इसलिए बारिश नहीं हो रही है। जिस दिन तुम्हारा घड़ा ठीक होगा, ठीक ऊपर की ओर मुंह करके होगा, साबुत होगा, जिसमें कोई छेद नहीं होगा, उसमें पानी भरेंगे, 1 मिनट में भरेगा, 5 मिनट में भरेगा, तब तुम चिल्लाएगा देखो अब बारिश होना शुरू हुआ, ऐसा नहीं होता है। घड़ा भरने से बारिश नहीं होती है, बारिश तो होती रहती है, घड़ा आज तुम्हारा भरा क्योंकि तुम पानी को भरने लायक आज बने, जिस दिन तुम उसको पाने लायक बन जाओगे उस दिन चिल्लाओगे जी दया आ गई, कृपा होने लग गई, आनंद मिलने लग गया, इसका अर्थ नहीं कि आनंद नहीं है, वो तो हमेशा से है, तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर कितनी है उसको डेवलप करो, तुम्हारे अंदर उसको लेने की क्षमता है या नहीं है वो देखो। शिकायत ये मत करो कि कुछ हो नहीं रहा है, शिकायत करना है खुद के अंदर, देखो कि तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा, जब तुम अपने अंदर ढूंढने लगोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। बट हम हैबिचुएटेड हो चुके हैं ये बोलने के लिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, जब मुझे लगता है कि मैं कम हूं, भगवान ने मुझे कम क्यों बनाया, दुनिया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसीलिए कि मुझे मैं कंपेयर करता हूं, मुझे वो नहीं दिखता, किसी का फोन बज रहा है, मुझे वो नहीं दिखता है कि मेरे पास क्या है, मुझे वो दिखता है कि दूसरों के पास मेरे से कितना ज्यादा है, क्योंकि ये जो कंपेयरिंग नेचर हमारे अंदर है वो हमें शांति से जीने नहीं देता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं इवन यहां भी प्रवचन के बाद कि आप बोलते हो वह शास्त्र में लिखा है कि ज्यादा लालच मत करो, आशा मत करो, वो मत करो, तो फिर तो इसका मतलब है कि आदमी तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, फिर तरक्की तो करेगा नहीं फिर। और इसी तरह आप लोग तो लोगों को बिल्कुल ठहरा दोगे, कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, आगे बढ़ना हो तो बड़ी बड़ी आशाएं करनी पड़ती है, उसके लिए फाइट करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, टेंशन लेना पड़ता है, ठीक है, इसको कोई मना थोड़े करता है, पर रास्ता आपको चुनना है, आपको किसमें मजा आता है, आपको दिन रात जाग करके परिवार के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, माइंड के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आपको बहुत बड़ी चीजें अचीव करना है, बहुत लोग करते हैं, पर सब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है ये स्टूपिडिटी है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी चीजों को अचीव करने वाले लोगों को लगता है कि ये सब स्टूपिडिटी है, ये लोगों को सब क्या शांति सुख के चक्कर में सब छोड़ छाड़ देते हैं, आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, ये स्टूपिड है, इनको भी लगता है ये लोग स्टूपिड है जो अपने सुख शांति को छोड़ करके पैसा पोस्ट नाम के पीछे पड़ते हैं। मरने के बाद क्या मिलेगा, करोड़ों कमाओ अरबों कमाओ, मरना तो सबको है। बड़े घर में मरो या झोपड़ी में मरो, मरना तो सबका है। हर एक दूसरे को स्टूपिड बोलता है। मुझे याद है एक रियल घटना, दिल्ली में एक आर्य समाज में संडे को जैसे हमारे यहां सत्संग होता है, सभी आर्य समाज में सत्संग होता है, तो एक आर्य समाज के सत्संग में मैं था। तो वहां कोई एक यंग सन्यासी आए हुए थे, मैं उनको नहीं जानता था, आए हुए थे, कोई साधना करते कहीं साधना करते थे, योग साधना वगैरह, बड़े अच्छे प्रबुद्ध सन्यासी थे, 27-28 साल के यंग लड़के थे। उनका इंट्रोडक्शन कर रहे थे जो आर्य समाज के प्रिस्ट थे, वहां पुरोहित थे, वो उनका परिचय कर रहे थे कि देखिए कितना महान व्यक्ति है वो, IIT दिल्ली के इंजीनियरिंग किया था और उन्होंने उसको छोड़ दिया, और उनको ये कंपनी से जॉब ऑफर आया था छोड़ दिया, और वो सब छोड़ के ईश्वर भक्ति में चले गए, कितने महान व्यक्ति है, उन्होंने सब इतनी बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ दिया। तो जब उनका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो वो यंग सन्यासी को बोलना था, तो उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं जो आदमी मेरे तारीफ कर रहे थे वो मेरी तारीफ कर रहे थे कि मुझे गालियां दे रहे थे, क्योंकि जो मुझे समझ में आया वो ये कहना चाहते थे कि मैं कितना स्टूपिड आदमी हूं कि बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ दिया छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए। पर मैं आप उनको बता दूं कि मैं इतना स्टूपिड नहीं हूं जितना मुझे समझते हैं, मुझे लगता है मैं उनसे ज्यादा स्मार्ट हूं कि मैंने जो डिसीजन लिया मैं बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीजों को छोड़ा है, मैंने किसी पर एहसान नहीं किया है, कोई ग्रेट काम नहीं किया है, मैंने स्मार्टनेस का काम किया है, मैंने स्मार्टनेस दिखाई है, मुझे मेरे सामने वो बड़ी तुच्छ चीजें हैं जिनको छोड़ना त्याग नहीं कहता है, वो छोड़ना मेरी स्मार्टनेस से मुझे उसे बड़ी चीजें अचीव करना था। अब ये क्या है, ये आपके परसेप्शन के पॉइंट है। आपको पोस्ट बड़ा लगता है, पैसा बड़ा लगता है, तो जब आप छोड़ देते हैं आपको लगता है बड़ा ग्रेट मैन है, पर जो छोड़ता है उसको लगता है स्टूपिडिटी है जो लोग उसके पीछे पड़ते हैं। इसीलिए ये दुनिया में दो तरह के लोग हमेशा रहेंगे, जो छोड़ने वाले को स्टूपिड कहता है और छोड़ने वाला पकड़ने वाले को स्टूपिड कहता है। ये डिसीजन आपको लेना है, आपको मजा किसमें आता है। तो ये तो संघर्ष रहेगा जिसको जब समझ में आ जाए। इसलिए ये कोई दो अलग अलग वो नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपकी आपका सेंस कितना है, आप समझ कितना रखते हैं। इंट्रोडक्शन करने वाले को लगता था कि एक प्रोफेशनल बड़ी डिग्री लेना बड़े पोस्ट पर जाना बड़ी चीज है, उसको छोड़ के सन्यासी बनना बड़ी छोटी चीज है, और जिसने त्याग दिया वो महान है, पर जिसने त्यागा उसको लगा ये यूजलेस है, ये बकवास है, नॉनसेंस है, मैंने कोई छोड़ा नहीं त्यागा नहीं, मैंने बड़ा अच्छा स्मार्ट डिसीजन लिया, मुझे मेरे लाइफ के लिए ये ज्यादा बड़ी चीज थी, वो छोटी छोटी चीजें थी, मैंने तब किया था जब मैं स्टूपिड था, जब मैं समझदार हुआ मुझे लगा यूजलेस है, मैंने छोड़ दिया, आपके लिए वो बड़ी चीज है मेरे लिए वो छोटी चीज है। पर सन्यासी बनने के बाद भी कोई ये बखानता फिरे कि मैं बड़े बड़े प्रोफेशनल पोस्ट को छोड़कर आया, वो तो सबसे काइया आदमी है, सबसे बेकार आदमी है, और उसकी दोनों तरफ का लालच है, वो लूटना चाहता है, ये सन्यासी का भी वो यूज करना चाहता है, वो प्रोफेशनल पोस्ट का भी यूज करना, उसको दोनों तरफ से यूज करना है। अगर आपको उसमें इतना बड़ा चीज दिखता है तो भाई छोड़ा क्यों, ये इतनी छोटी चीज है तो इसको लिया क्यों, उनके लिए छोड़ दो जिनके लिए महान चीज है। जब उपनिषद की क्लास होती है अब लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, कि ये सब क्या पॉसिबल है कि आत्मा परमात्मा ये कर दो छोड़ दो। ठीक है, पॉसिबल नहीं है उन लोगों के लिए जिनके लिए रास्ता अलग है। जब आपको दुनिया में मजा आने लगता है तो उपनिषद आपके लिए बेकार है, नेचुरली वो आपके लिए है ही नहीं। जिसको मैथ नहीं आता, जो स्कूल में जिसकी मैथ नहीं होता है, जिसको साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता, उसके लिए फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री ये सब यूजलेस है। जिसको पेंटिंग करने में मजा आता है, जिसको आर्ट करने में आनंद आता है, उसके लिए ये सब बकवास है। ये इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, उसको आनंद उसी में आता है। पर किसी साइंटिस्ट को बोलो, इंजीनियर को बोलो, ये देखो ये पेंटिंग कर रहा है, क्या बकवास है, टाइम पास है। टाइम पास नहीं, करोड़ों साइंटिस्ट बन के एक भी पेंटिंग मोनालिसा नहीं बना पाएंगे। वो उसका एटीट्यूड है, वो तुम्हारा एटीट्यूड है। कोई आर्टिस्ट साइंटिस्ट नहीं बन सकता, कोई साइंटिस्ट आर्टिस्ट नहीं बन सकता। दो अलग अलग सोच है और एक दूसरे को कोसते हैं। इसलिए जीवन में जो कुछ है, जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर कंप्लेन दूर हो जाता है। जब हम कंपेयर करने लगते हैं तो प्रॉब्लम पैदा होता है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। जो तुम हो पहले वो तो एक्सेप्ट करो। कल किसी के घर गए थे तो वो शिकायत कर रहे थे अपनी लाइफ के बारे में कि लाइफ में ऐसे बहुत बुरी हुई, ऐसे हुआ, लोगों ने ऐसे किया, ऐसे किया। उनका भूल जाओ, अब जो हो गया ना सब बोलते हैं भूल जाओ। कैसे भूल जाओ, उन्हें फिर पकड़ के बैठो। बोले उसी कारण डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, सब हो गया, आगे कुछ नहीं कर पा रहा। मतलब आप सोचो, आपको आगे बढ़ना है तो भूलना पड़ेगा, पकड़ के बैठना है तो आगे छोड़ दो। वो मानने को तैयार नहीं हुए, छोड़ने को तैयार नहीं हुए कि जो उनके साथ हुआ। तो मैंने उनको समझाया कि मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक महात्मा गांधी के इंसिडेंट सुनाता हूं। वो कहा करते थे कि जब आपको लगे कोई कि आप बहुत गरीब हैं, दुखी हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है, जो भी हो रहा है, जिसके कारण आपके अंदर कोई डिप्रेशन पैदा होने लगे, तो अपने से नीचे वालों को देखो। अगर आपको लगे कि आप बहुत गरीब हो तो देखो कितने करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो आपसे भी गरीब हैं, जो फुटपाथ पर भी रहते हैं, बच्चा ही फुटपाथ पर पैदा करते हैं, वो वहीं पलवड़ के बड़े हो जाते हैं। आपको अगर लगता है कि आपकी हाइट कम है, ज्यादा है, सुंदर हो नहीं हो, मोटा हो पतला हो, दुनिया में कितने लाखों करोड़ हैं जिनके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, मुंह नहीं, उनसे तो आप बेटर हो। तो आपका दुख अपने आप कम होने लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप बहुत सारे लोगों के नीचे तो हो पर बहुत सारे लोगों के आप ऊपर हो। शुक्र मनाओ कि आप वो नहीं हो। ज्यादातर लोग घर में जब कोई बीमार होता है, हम जब बीमार होते हैं तो हमें लगता है हमारे साथ क्या हो गया। तो गांधी जी की थ्योरी होती है अपने से नीचे वालों को देखो। तुम्हारी बीमारी अगर तुम्हें चुभाने लगे तो हॉस्पिटल में घूमो, देखो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग पड़े हैं, एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, लाखों में, करोड़ों में लोग तुमसे भी खतरनाक बीमारियों में, ज्यादा भयंकर दर्द में पीड़ित हैं, कष्ट सहते हैं। और जब आपको लगे कि आप दूसरों से बड़ा हो तो फिर अपने से बड़े वालों को देखो, तुमसे भी कितने बड़े बड़े बैठे हैं। तो जब आप अपने अंदर आकर आने लगे, घमंड आने लगे, ऊपर वालों को देखो, जब हीन भावना आए नीचे वालों को देखो। समझाया उसको, समझ में आया नहीं, क्योंकि उसको कंप्लेन करना है लाइफ लॉन्ग। और होगा क्या, कुछ नहीं अचीव होगा सिवाय दर्द के। तुम्हारे पास जो है वो तुम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, तुम्हारे पास जो नहीं है उसी की कंप्लेन करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा,
ये जो थैंकलेस लाइफ है, ये जो ग्रैटिट्यूड लेस लाइफ है, वो आपके लाइफ को मिजरेबल करता है और किसी का कुछ नुकसान नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द डे देयर इज ए थैंकलेस डिसकंटेंटेड हार्ट क्राविंग फॉर मोर, नो वंडर व्हाई आवर हार्ट्स एवर रिमेन हार्ड एंड ड्राई इन स्पाइट ऑफ रिसीविंग सो मच इन अबंडेंस। ये अबंडेंस आपको लगता होगा भाई मेरे पास क्या है, उसके पास ज्यादा है। जब काउंट करो आपके पास क्या क्या है जो दूसरों के पास, करोड़ों के पास नहीं है, अरबों के पास नहीं है, वो इतने सारे होंगे तो आप काउंट भी नहीं कर सकते। ट्रू हैप्पीनेस लाइज नॉट इन गेनिंग। कभी करके देखिएगा, आप $1,000 कमा के देखिए और $100 एक नीडी आदमी को देकर देखिए, आपको जो खुशी मिलेगी, आप उसको कंपेयर करिए, आप खुद समझ जाएंगे कि आपको किसमें मजा आता है। जिन्होंने कभी दिया ही नहीं उनको समझ में ही नहीं आएगा देने का क्या आनंद होता है। जिसने कभी दूसरे का हेल्प किया नहीं वो समझ नहीं पाएगा नेचुरल। पर एक बार अगर आप किसी की हेल्प किया तो आप कभी छोड़ नहीं सकते हो करना। उसका जो मजा है, उसका जो आनंद है, वो अपने तरह का होता है। जैसे आप जब लेते हो और लाने को मन करता है, उसमें एक डिससेटिस्फेक्शन हर एक मिनट के बाद आ जाता है। आपको हजार चाहिए, हजार मिला, अगले दिन आप 1200 लेने की कोशिश करते हो। वो जो आपको थोड़ी देर के लिए संतोष मिला, वो एक दो मिनट के बाद दोबारा डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। पर जब आप किसी को हेल्प करते हो, देते हो, वो जो अंदर से आपको अजीब सी खुशी मिलती है, अगर आप दिल से देते हो, किसी के कहने पर नहीं, मेरे कहने पर, घर वालों के कहने पर, किसी के कहने पर देते हो, तो और दुखी मरोगे। क्यों दिया मैंने, मेरे $5 बेकार चला गया, बेकार दिया, फिर तो आप दुखी दुखी होगे। अगर वो दिल से आप किसी को देते हो और वो दिल से जो आपकी जो खुशी आती है, जो वो जो आनंद आता है, वो आनंद का कभी अंत नहीं होता है वो, क्योंकि होलिस्टिक, वो जो होल ब्लिस होता है, पूरा आनंद होता है उसमें। और करोगे तो और आनंद मिलेगा, पर उसमें डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता है। सो यू डिस्कवर द काउंटिंग आवर ब्लेसिंग द हार्डेस्ट अरिथमेटिक टू मास्टर। मैं जैसे पिछली बार भी हमने चर्चा की, मैं दुखी हूं, मेरे पास अच्छे जूते नहीं है, पर मैं भूल जाता हूं कि बहुतों के पास पैर भी नहीं होते। जूते तो वो खरीद सकते हैं पर उनके पास पैर नहीं है। मुझे अपने दोनों सलाब अच्छे पैर नहीं दिखते हैं, मेरे जूते की पैसा मुझे दिखता है कि मेरे पास महंगे जूते क्यों नहीं है। हम घड़ी देख करके कंपेयर करते हैं कि मेरे पास अमुक घड़ी क्यों नहीं है, पर हम भूल जाते हैं लाखों लोगों के पास हाथ भी नहीं होते और तुम्हारे पास खूबसूरत दोनों हाथ हैं। जो है वो दिखने लगे तो शांति आने लगती है। दैट इज कॉल्ड थैंक्स फीलिंग। और जो अच्छे लोग हैं उनको उनके साथ कुछ खराब भी होता है उसमें भी उनको अच्छाइयां दिख जाती है, वो उसमें भी थैंकफुल हो जाते हैं। एक बार सुनाया था, एक आदमी हॉस्पिटल में, उसको कैंसर हुआ था और बड़े एडवांस स्टेज में उसके पता चला। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब 1.5-2-3 महीने के हैं आपकी लाइफ है, सॉरी जो भी है। लोगों ने फिर अपनी संवेदनाएं देने शुरू कर दी तो उसने कहा कोई बात नहीं। 2-4 दिन के बाद उस व्यक्ति के लाइफ में चेंजेस दिखा। हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स, जो लोग मिलने जुलने आते हैं, उसकी शक्ल में एक अलग चमक था। दर्द तो था कैंसर के, अपने दर्द थे, वो खुश था, ईश्वर के भजन कीर्तन में, भगवान के कीर्तन में ज्यादा व्यस्त रहता था। बाकी बीमार लोगों के साथ मिलना जुलना, हंसना। डॉक्टर ने पूछा ये क्या बात है। ज्यादातर जब हम ऐसा कोई इंफॉर्मेशन देते हैं बीमार आदमी को कि आप एक दो महीने जीने वाले हो, वो तो 15 दिन लाइफ उसका उसी समय कम हो जाता है। कितनी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है कि मैं मरने वाला हूं। और आप तो बिल्कुल उल्टा दिख रहे हो, क्या राज है, क्या सीक्रेसी है? आदमी ने बोला, मैं तो भगवान का शुक्रगुजार, करोड़ों करोड़ों लोगों को पता ही नहीं चलता कब मरेंगे, मैं तो शुक्रगुजार हूं, मुझे पता है कि मैं 2 महीने के बाद मरने वाला हूं। आई कैन प्लान माई सेल्फ फॉर द लेफ्ट ऑफ द लाइफ। बाकी 2 महीने के लिए कम से कम मेरे पास प्लान करने के टाइम तो है, तो मैं यूजलेसली क्यों इनको गवाऊं? जो मुझे नहीं कर पाया कर पाया, सबको मैं एंजॉय करता हूं। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि मुझे पता है कि मैं कब मरने वाला हूं। ये जब आप नोबल हार्ट आदमी होते हैं, अच्छे दिल के व्यक्ति होते हैं, आप अपनी नेगेटिव चीजों को भी आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। जब आप थैंकलेस आदमी होते हैं, पॉजिटिव को भी नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, जितना मिला उसमें भी रोते फिरते रहते हैं। इसीलिए दूसरों के प्रति ये भाव होना जरूरी है। ईश्वर के प्रति जो प्रार्थना हमारी प्रेयर हम करते हैं, पूजा करते हैं, उसका मेन उद्देश्य यही है कि हम अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो दिया उसके द्वारा मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, फिर आपकी जरूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है, बच्चा पैदा करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक होने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो मैं इसी से करवा सकता हूं। अगर मैं इससे करा नहीं सकता तो मैं नालायक हूं, मेरी कमी है, तुम्हारी नहीं है, तुमने जितना दिया दैट्स एनफ। अगर मैं पैसा कमाने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करूं तो मेरे से ज्यादा निहायत नालायक और कौन हो सकता है? बच्चा पैदा करने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करूं तो मेरे से नालायक और कौन हो सकता है? वो तो तुम्हारे पास ईश्वर ने शरीर दिया, बुद्धि दिया, मन दिया, सब कुछ दिया, इसको ठीक से इस्तेमाल करो, सब प्राप्त करोगे। जो दिया उसने कैपिटल आपको सफिशिएंट दे दिया, उस पर आप खड़ा करो, अपना अंपायर खड़ा करो। पर हम रोते रहते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बीमार हूं तो ठीक होने के लिए मैं करूं, तुम क्या करोगे? तुम्हारा काम फिनिश, तुमने जितना दिया वो काफी है मेरे लिए, मैं यूज नहीं कर पाता हूं, दैट्स माय प्रॉब्लम, यू हैव डन एनफ फॉर मी। पूजा ईश्वर की इसी के लिए होती है। सो लेट अस ग्रेटफुल टू पीपुल हु मेक अस हैप्पी, दे आर द चार्मिंग गार्डनर्स हु मेक आवर सोल्स ब्लॉसम। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईश्वर के लिए हम धन्यवादी हैं, हम उन लोगों के लिए भी धन्यवादी होना चाहिए जो हमारे आस पास, पड़ोस, मां बाप, समाज, सोसाइटी, बंधु मित्र, जिनको हम नहीं जानते, वो हमारा सरकार, जो भी कर, जिनके कारण हमारे लाइफ में कुछ होता गया, उन सब के प्रति भी हमारा अंदर वो भाव बना रहे तो फिर हम ज्यादा सुखी रहेंगे। अंडरस्टैंड, इफ एवर यू फील लाइफ इज डल, दैट इट इज नॉट अ ज्यूसी एज इट शुड बी। जैसे कि हमारे में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समय लगता है, इट इज बिकॉज ग्रैटिट्यूड हैज नॉट हैपेंड इन यू। इवन पति पत्नी के बीच में, बच्चे और मां बाप के बीच में जब ये जुशी रिलेशनशिप कम दिखने लगे, वो इसीलिए कि हमारे सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कम हो गया है। उसको दोबारा रिवाइव करिए, फिर प्यार, फिर रिलेशनशिप अपने आप अच्छा होने लगेगा। किसने मेरे लिए क्या किया ये काउंट करो, ये नहीं कि मैंने किसके लिए क्या काउंट किया। जब हम मैंने क्या किया ये काउंट करने लगते हैं तो रिलेशनशिप टूटने लगता है, मेरे अंदर भी प्रॉब्लम पैदा होने लगते हैं। और जब मैं ये काउंट करने लगूं को दूसरों ने मेरे लिए क्या किया, मैं ज्यादा समझदार होता हूं, ज्यादा कोमल होता हूं, मेरा सुख ज्यादा भरा होता है। और हमारे भारतीय परंपरा में तो यही बात मुख्यतः होता है, थैंक्स लेना पाप है, थैंक्स देना ये पुण्य है। किसी के लिए कुछ करो अगर विथ एक्सपेक्टेशन, तो
तो ये अधम कैटेगरी का है, वर्स्ट कैटेगरी का है। किसी के लिए कुछ करो विदाउट एक्सपेक्टेशन, ये बेस्ट कैटेगरी का होता है। किसी के लिए करो तो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी थैंक्स। अब अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ करे फुल ऑफ थैंक में रहो तो तुम, क्योंकि हमारे कल्चर का जो मुख्य पॉइंट होता है वो आप होते हैं, मैं होता हूं, मैं खुश रहूं। और यकीन मानिए दुनिया में जो भी धार्मिक आध्यात्मिक जो कुछ है वो सिर्फ आपकी खुशी के लिए। आप जो कुछ करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों पर कम एहसान करते हैं, खुद के लिए ज्यादा करते हैं। इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गॉड सोर्स ऑफ ऑल लाइफ गिवर ऑफ ऑल ग्रेस आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ फॉर द ब्रीथ दैट सस्टेन्स माई लाइफ फॉर द बीटिंग ऑफ माई हार्ट फॉर द फूड ऑफ दिस अर्थ दैट नर्चर्स लाइफ आई एम ग्रेटफुल फॉर beloved ones who share life with me लाइक माई फैमिली members. Those in our world beside me and those in worlds beyond my knowing. लाखों लोगों का अननोइंगली आपके ऊपर हेल्पिंग रहता है, आपको पता नहीं कितने लोगों के कारण आपका लाइफ चलता है। फॉर द लव ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स विदाउट हुज देयर वुड बी नो लाइफ। हम ईश्वर के, हमारे आसपास के सभी नेचर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमारे मां बाप से शुरू करके ईश्वर देवता प्राणी अननोन अननोन हर किसी के प्रति हमारे अंदर वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड बना रहे तो हम भी सुखी रहेंगे, दुनिया भी सुखी रहेगा। इसी के साथ